दोस्तों, हमारी आज की कहानी है घर, जिसे लिखा है मालती जोशी जी ने। तो चलिए कहानी शुरू करें। घर। पिंटू ने पिल्ले को इतनी बेरहमी से जमीन पर दे पटका कि दीपू का नन्हा सामान करुणा से पसीज उठा। इच्छा हुई कि पिंटू को कस कर एक झापड़ लगाए, पर पिल्ले को गोद में समेटते हुए उसने बस इतना ही कहते बना, ऐसे मारा जाता है कहीं, गूंगा जानवर है बेचारा, देख लेना भगवान जी तुम्हें खूब पाप देंगे। लेकिन इतनी सी बात पर भी दोनों भाई बहन उस पर चढ़ बैठे। बड़ा आया भगवान जी का भगत, हमारा पिल्ला, हम मारेंगे, हजार बार मारेंगे, मार डालेंगे, तुम बीच में बोलने वाले कौन होते हो। दीपू का सारा आवेश ठंडा पड़ गया। पिल्ला कब उसके हाथ से छीन कर पारुल के पास चला गया, इसका भी उसे होश न रहा। किसी अनाम दुख से सुबकता हुआ वह मम्मी के पास दौड़ आया। उनकी गोद में मुंह छुपाते हुए बोला, मम्मी हमें भी एक कुत्ता ला दीजिए ना प्लीज। मम्मी हसबे मामूल किताब पढ़ रही थी। दीपू की गुहार उनके कानों तक तो पहुंची ही नहीं, खींच कर उसने किताब खींच ली। क्या है रे, क्यों तंग कर रहा है, मम्मी चीखी। पढ़ते समय कोई परेशान करे तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, पर दिन भर ही तो पढ़ती रहती हैं, अपनी बात कोई कहे भी तो कब। कॉलेज क्या जाने लगी हैं, दीपू की तो मुसीबत हो गई है, अब बोल ना क्या बात है। हमें एक कुत्ता चाहिए, उसने कुनमनाते हुए अपनी फरमाइश पेश की। लकी है तो वह तो पिंटू का है, तो क्या सबके लिए अलग अलग कुत्ते आएंगे, वह अकेला ही तो घर भर की नाक में दम किए हुए है। लेकिन पारुल पिंटू हमें छूने ही नहीं देते, हमें तो अपना वाला चाहिए। चाहिए तो पर रखोगे कहाँ, अपना सिर छुपाने के लिए तो ढंग की जगह नहीं, मम्मी ने भुनभुनाई। दीपू ने अपने चारों ओर देखा। मम्मी ठीक ही तो कहती है, कितना छोटा सा कमरा है, वो तो दीपू की खटिया दिन भर मम्मी के पलंग के नीचे बनी रहती है, नहीं तो हिलने की भी जगह ना हो। नानी का पूजा वाला कमरा तो है, उनकी खाट और ठाकुर जी तो अब स्टोर में पहुंच गए हैं, नहीं तो शायद इसी कमरे में उनकी खुल खुल खांसी भी रात भर सुननी पड़ती। मम्मी तो फिर से अपनी पुस्तक में खो गई। दीपू उनकी गोद में पड़ा पड़ा सोचता रहा, फिर कुछ देर बाद उब कर बाहर चला गया। कंपाउंड में पिंटू के दोस्त जुड़ आए थे, शायद क्रिकेट खेलने। अपमान का घाव ताजा था, इसलिए वह चुपचाप बरामदे में खड़ा निमंत्रण की राह देखता रहा। लेकिन पिंटू के पास ढेर से साथी थे, वह नक्कू क्यों बनने लगा, उसका खेल मजे से शुरू हो गया। फिर वहाँ खड़े रहना दीपू को बड़ा दयनीय सा लगने लगा। वह हॉल में चला गया, गोल मेज पर ढेर सारी पत्रिकाएं पड़ी थी, उन्हें लेकर वह सोफे पर बैठ गया और तस्वीरें देखने लगा। सबका बच्चों वाला पेज उसने पढ़ डाला, कविताएं रट ली, पहेलियों के उत्तर याद कर लिए। अब कोई कुछ पूछेगा तो पिंटू और पारुल मुंह ताकते रह जाएंगे, राजा बेटा तो दीपू ही बनेगा। दीपू जी सोफे पर पैर लेकर नहीं बैठते, कितनी बार मना किया है। उसने चौंक कर देखा, मामा जी पता नहीं कब कमरे में आ गई, पता नहीं कब उसने पैर ऊपर कर लिए, अनजाने में हो ही जाता है सब। वह चुपचाप बैठा अपराधी भाव से मामी जी को देखता रहा, तो यहाँ वहाँ से कागज के टुकड़े बिन रही थी। मामी जी, उसने साहस बटोरते हुए कहा, पिंटू हवाई जहाज बना रहा था ना, यह कचरा उसी का फैलाया हुआ है। कोई भी फैलाए बेटा, डांट तो हम ही को खानी है, मामी जी ने कसैले स्वर में कहा, तो उसे लगा व्यर्थ ही अपनी सफाई देखता रहा वह। मामी जी को आजकल उसकी कोई भी बात अच्छी नहीं लगती, पहले वाला लाड प्यार जाने कहाँ चला गया। होता क्या है कि बच्चे चाहे लड़ाई करें चाहे शरारत, नानी जी उसका पक्ष ले लेती हैं और डांट पड़ती है पिंटू या पारुल को। मामी जी को अपने बच्चों को ही घुड़क देते हैं, उससे कोई कुछ नहीं कहता, इसीलिए हर बार मामी जी का मुंह फूल जाता है, बच्चे भी उससे कट जाते हैं। इससे तो अच्छा है थोड़ी डांट पड़ जाया करे, तब इतना अकेला तो नहीं पड़ जाएगा वह। इससे तो सचमुच गांव ही अच्छा लगता था, डांट पड़ती थी तो सबको एक साथ, दादाजी खुश हो जाते थे तो सबको एक एक चवन्नी इनाम मिलती थी, जब कुल्फी वाले की राह देखते तो कितना मजा आता, दूर से ही उसकी साइकिल की घंटी बजती और सब दौड़ पड़ते, यहाँ तो कुल्फी का नाम भी ले लो तो गजब हो जाए। गांव में सचमुच आनंद था, खूब लंबा चौड़ा घर, दूर दूर तक फैले खेत, बच्चे कहाँ समा जाते पता ही नहीं चलता। मजे से कुएं पर नहा रहे हैं, गन्ना चूस रहे हैं, पेड़ से कच्ची अमियां तोड़ रहे हैं, कोई रोकता ही नहीं था। न दिन भर जूते मोजे पहनने की बंदिश थी, न बार बार शौरी और थैंक यू कहने का झंझट। डाइनिंग टेबल पर करीने से बैठकर तमीज से खाना खाने का सिर दर्द भी नहीं था। बस जब भी भूख लगी दादी के गले में बाहें डाल दी या ताई जी की साड़ी में लिपट गए, फौरन मम्मी को हुक्म हो जाता और चुपचाप थाली लगाकर ले आती। यहाँ तो डांटने ही लगती हैं, जाने कौन से अकाल से चला आया है, दिन भर भूख भूख ही चिल्लाया करता है। अब उसे बार बार भूख लग जाती तो वह क्या करे। अंग्रेजी स्कूल की समस्या ना होती तो वह गांव में ही बना रहता। मम्मी चाहे यहाँ चली आती, यहाँ उसे जरा अच्छा नहीं लगता। मम्मी सुबह कॉलेज चली जाती है, दिन भर या तो पढ़ती है या बुनाई लेकर बैठ जाती है। पापा को लंबी लंबी चिट्ठियाँ लिखने का काम और पाल लिया है। अब दीपू को भूख लगती है तो वह किससे कहे। मामी जी के पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ती। नानी माँ लाड़ तो सब करती है पर उनसे होता हुआ था कुछ नहीं, बस बैठे बैठे ऑर्डर दिया करती हैं। मम्मी ने तो जैसे किचन में जाने की कसम ले रखी है, यह भी नहीं होता कि एक आध बार नानी की चाय बना दे। कभी कभार मम्मी रसोई में चली जाया करे तो दीपू की भी पहुंच वहां हो जाए। कितने दिन हो गए हैं उसे आटे की लोई से चिड़ियां बनाए हुए, भिंडी के डंडलों से दीवार पर चित्रकारी किए हुए, ताजे उबले आलू में नमक लगाकर खाने की बड़ी इच्छा होती है पर मन मार कर रह जाता हूँ। कढ़ाई में सिकते हुए मूंगफली के दानों की सुगंध से उसके मुंह में पानी भर जाता है। पिंटू उसके हिस्से के 4-6 दाने उसे पकड़ा भी जाता है पर उससे मन कहाँ भरता है। मन में तो यही लगा रहता है कि इस पिंटू के बच्चे ने जरूर बेईमानी की होगी। नारियल की गरी कसने के बाद जो सफ़ेद सफ़ेद सा मीठा हिस्सा बच जाता है, घर पर हमेशा उसके ही हिस्से आता था पर यहाँ तो 3-3 दावेदार मौजूद हैं। उसे पिंटू की तरह झपटना भी तो नहीं आता। मम्मी का डर बना रहता है, फिर पेटू कहलाने की चिंता भी हमेशा सिर पर सवार रहती है। सोफे पर पांव रख दो तो लोग कैसे कैसे देखने लगते हैं, फिर खाने के लिए जिद करना तो बहुत बड़ी बात है। होमवर्क करते करते वह बिस्तर पर पसर गया। थोड़ी देर बाद आंखें खुली तो देखा मम्मी शीशे के सामने खड़ी जूड़ा बांध रही है। कहाँ जा रही हो मम्मी। जाना कहाँ है रे, यूं ही घूमने। हम चलें। चलो। फटाफट तैयार होकर वह बाहर आया तो देखा पिंटू और पारुल मम्मी से झूल रहे हैं। पुआ पार्क जा रही है, हम भी चलेंगे। और बस मम्मी ने हाँ कर दी। दोनों उछलते हुए कपड़े बदलने चले गए। इतना गुस्सा आया, मना क्यों नहीं कर दिया, उसने मुंह फुला कर कहा। अरे वाह, ऐसे मना करते हैं पगले, हमसे कुट्टी हैं दोनों, दिन में 10 बार तो तुम्हारी कुट्टी होती है। अच्छा चलो, हम दोस्ती करवा देंगे। दोस्ती तो हो गई पर घूमने का सारा मजा किरकिरा हो गया। थोड़ी देर को मम्मी के साथ एक अलग दुनिया बसाने की सोच रहा था, सब चौपट हो गया जब पूरे रास्ते पिंटू पटर पटर बोलता जाएगा और पारुल तो ऐसे चिपट जाएगी जैसे उसकी अपनी मम्मी हो। पार्क में मम्मी कहानी भी सुनाएगी तो पारुल गोद में चढ़ी रहेगी। सबसे ज़्यादा मुसीबत यह है कि ये लोग साथ में होते हैं तो मम्मी कुछ भी नहीं खिलाती। घर पर तो कभी जी भर कर खाया नहीं, पार्क में जरूर थोड़ी सी जिद कर लेता है। मम्मी फिर कभी कभार ले भी देती है पर ये लोग साथ में होते हैं तो झट घर चुगली कर देते हैं। ना भी करे तो अगले दिन किसी का गला खराब हो जाता है तो किसी का पेट खराब हो जाता है। बस मामा जी फौरन ताड़ जाते हैं। कल बुआ के साथ पिकनिक मनी होगी क्यों, वह कहते हैं और लगे हाथ मम्मी को भी एक हल्की सी डांट पिला देते हैं। पता नहीं कैसे लोग हैं, जरा सो कुछ हजम ही नहीं कर सकते। दीपू को खिला कर देखे कोई, सच पापा में यह बात अच्छी है, खूब खाएंगे खूब खिलाएंगे, मम्मी टोकेगी तो डांट देंगे। खाने दो उसे, अपनी तरह नाजुक मिजाज मत बनाओ। अब तो पापा भी चाट पकौड़े खाने के लिए तरस गए होंगे, वहाँ तो ये सब चीज़ें क्या मिलती होंगी। वैसे उस दिन तो मामा जी बतला रहे थे कि अब तो लंदन में ढेर सारे हिंदुस्तानी होटल खुल गए हैं, सब तरह का खाना मिलने लगा है, मतलब पापा वहाँ भी मजे कर रहे होंगे और पप्पू यहाँ हिंदुस्तान में भी कुछ चीज़ों के लिए तरस रहा है। पार्क में गीली घास पर बैठा हुआ यही सब सोचता रहा और कुड़ता रहा। पापा कब आएंगे मम्मी? रात को उसने रोज की तरह मम्मी की गोद में दुबकते हुए कहा। क्या पता कब आएंगे, मैं तो इतना बोर हो गई हूँ, कहीं चलो ना मम्मी। कहाँ चलेंगे बेटा, मम्मी ने हताश स्वर में कहा। सच तो था, कहाँ जाएंगे, मौसी की अभी पिछली छुट्टियों में ही होकर आए हैं, बार बार जाना क्या अच्छा लगता है। फिर ले देकर एक गांव ही रह गया है, दीपू को तो वहाँ मौज रहती है पर मम्मी बेचारी बड़ी परेशान हो जाती है। कहने को इतना बड़ा घर है पर ढंग का एक कमरा भी नहीं, न बिजली न नल, बस गर्मी में तपते रहो। पानी तो खैर मेहरी ला भी देती है पर ढंग का बाथरूम भी तो हो। मम्मी हर बार अपना ट्रांजिस्टर ले जाती है पर सुनने का समय नहीं मिलता। किताब तो वहाँ छूती तक नहीं, बस दिन भर ताई जी के साथ रसोई में घुसी रहती है या गांव की औरतों से घिरी दादी के पास बैठी रहती है। खूब आगे तक सिर ढके चुप चुप रहने वाली यह मम्मी कितनी अजीब सी लगती है, कितनी बेचारी सी। ना अपनी खुशी के लिए मम्मी को परेशान नहीं करेगा वह। अपने घर कब चलेंगे मम्मी? अपने घर पापा तो आ जाएं, पापा कब आएंगे? बस घूम फिर कर वही प्रश्न, पापा कब आएंगे मम्मी। आखिर पापा की वह चिट्ठी आ ही पहुंची जिसका इतनी बेसब्री से इंतजार था। कितना खुश था दीपू उस दिन, सारे घर में नाचता हुआ गा रहा था, अब तो हम अपने घर जाएंगे, अब तो हम अपने घर जाएंगे। मामी जी से आखिर ना रह गया, पूछ ही लिया, दीपू जी यह घर किसका है? फिर तुम्हारा नहीं है ना, उसने बेतकल्लुफी से कहा। यह तो पिंटू लोगों का है, हमारा तो भोपाल में है। भोपाल को भूल जाओ बेटे, अब कलकत्ता की बात करो, मामा जी ने पीठ थपथपा कर कहा। पर कलकत्ता की कल्पना उसे गुदगुदा ना सकी। उसने मन प्राणों से तो वही पुराना घर बसा हुआ था। पापा जो को लिवाने मामा जी के साथ दीपू और मम्मी दोनों बंबई गए थे, हवाई जहाज देखने में उसकी बरसों की तमन्ना पूरी हुई थी। और वहाँ तो इतने ढेर सारे हवाई जहाज थे, वहाँ उतने सारे लोगों में दूर ही खड़ा रहा, पापा को पहचान भी ना सका। पास आने पर ही कुछ देर तो संकोच से दूर ही खड़ा रहा, आखिर पापा ने ही उसे गोद में उठा लिया। कितना लंबा हो गया रे, उन्होंने प्यार से उसे चूमते हुए कहा। वह धीरे धीरे पापा के गालों को छूकर देखता रहा, फिर धीरे से बोला, पापा अपने अब घर चलेंगे ना। पापा उसके लिए ढेर सारे खिलौने लाए थे, फर वाला कोट, रंगीन स्वेटर, तस्वीरों वाली रंगीन किताबें, खुशी का जैसे पूरा सामान ले आए थे। पर सबसे बड़ी खुशी थी तो बस घर जाने की, अपने घर जाने की। पापा आए तो मेहमान नवाजी का एक लंबा दौर शुरू हो गया, कभी किसी के यहाँ खाने जाना तो कभी किसी के यहाँ चाय पे जाना। दो चार पार्टियाँ तो मामा जी ने ही दे डाली। दीपू बुरी तरह बोर हो गया था, इन लोगों को 6 साल से देखते देखते तंग आ चुका था, अब कोई आकर्षण बाकी नहीं था। लगता था पापा पता नहीं कितनी लंबी छुट्टी लेकर आए, घर चलने का नाम ही नहीं लेते। मामा जी ने वहाँ से चले तो सीधे गाँव पहुँचे, वहाँ भी तो इंतजार हो रहा था। दादा ने पता नहीं कितनी कैसी कैसी पूजा मांग रखी थी, गांव पहुंचते ही वह खटराक शुरू हो गया, मिलने वालों का यहाँ भी तांता लगा रहा। पापा इंग्लैंड क्या हुआ है, जैसे अजूबा बन गए। दादी तो उन्हें ऐसे देखती थी कि बस, रोज शाम को नज़र उतारी जाती, मम्मी कोने से छिप कर हंसती रहती। राम राम करके चलने का दिन आ गया तो सबकी आँखें गीली हो गई, पर दीपू का मन बिल्लू उछल रहा था, वह अपने घर जा रहा था। वहाँ मेज पर चढ़कर हाई जंप लगाएगा, बालकनी पर घुड़सवारी करके मम्मी को डराएगा, रेडियो के सुर से सुर मिलाकर गाएगा, ये सारे काम उसने कब से मुतल्लिब कर रखे थे। पर मम्मी के साथ उस कबूतर खाने में प्रवेश करते ही उसका मन बैठने लगा। यह क्या मम्मी, यह अपना घर नहीं है। यही है बेटा, यह कलकत्ता है, यहाँ ऐसे ही छोटे से घर में रहना पड़ेगा। धत तेरे की, क्या सोचा था और क्या निकला। दूसरे दिन ये ट्रक आ गया था, धीरे धीरे सामान खुलने लगा तो हर्ष और विस्मय से उसकी आंखें खिल गई। वह हर चीज को सूंघता, मम्मी छत पर गद्दे सुखाने लगी तो उन पर लौट लौट होता रहा। लोटपोट होता रहा। 2 साल तक बंद रहने के बाद भी उसमें एक परिचित महक बच गई थी। यह महक, यह गंध दीपू के मन में सोई यादों को तरोताजा कर रही थी। मम्मी घर पर भी जैसे जादू हो गया था। दिन भर बनी संवरी लेकिन गुमसुम रहने वाली मम्मी गुनगुनाती हुई काम में जुट गई थी। सलवटों पड़ी साड़ी और बिखरे बिखरे बालों में मम्मी एकदम घरेलू लग रही थी। पापा दनादन पैकिंग खोलते जा रहे थे। मम्मी सामान धो पोछ कर जमाती जा रही थी। दीपू उन दोनों के बीच फुदकता फुदकता छोटे मोटे काम कर रहा था। शाम तक किचन सही शक्ल में आ गया। ड्राइंग रूम में भी बैठने के लायक हो गया था। दोनों हाथ ऊपर उठाकर पापा ने एक लंबी सी जमा ली और ऐलान कर दिया कि बाकी सब काम कल किया जाएगा और यह भी कि रात का खाना होटल में खाएंगे। एकदम घर में उत्सव का सा वातावरण बन गया। उसके हाथ मुँह खूब अच्छे से धुलवा कर मम्मी ने उसे नए लंदन वाले कपड़े पहना दिए और खुद नहाने चली गई। पापा वॉश मशीन के सामने खड़े होकर शेव बनाने लगे। नाइट सूट पहनकर शेव बनाते पापा उसे बड़े अपने से लग रहे थे। उनका यह रूप तो वह भूलता जा रहा था। जब से आए थे पापा बढ़िया सूट में सजे धजे ही घूम रहे थे। लोगों से धीमी धीमी आवाज में बात कर रहे थे पापा। नानी के सामने बड़े अदब कायदे से रहने वाले पापा उसे मेहमान से लग रहे थे। गांव जाने पर सूट तो उतर गया पर लोग बागों से घिरे बुंदेली बोलते हुए पापा बड़ी दूर की चीज लगते। कभी दादी के गोद में सिर रख कर लेट जाते तो कभी ताई जी के पल्लू से हाथ पोछने लगते। उस समय वे बिल्कुल बच्चों से लगते, पापा तो बिल्कुल भी नहीं। सुनो, मम्मी नहा कर आ गई थी। वह गीजर ठीक से काम नहीं कर रहा, देख लूँगा अभी। गैस कंपनी को कल याद करके फ़ोन तो कर दोगे ना? यस बाय ऑल मीन्स। टीपू के स्कूल का क्या करें? मिड सेशन के एडमिशन तो मिल जाएगा ना? देख लेंगे, ढेरों स्कूल है यहाँ, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। कहीं ना कहीं नहीं जी, अच्छा स्कूल चाहिए। अच्छा, उसको क्या करेंगे? डेयरी वाले घर दे जाते हैं क्या? पड़ोस से पूछ लो, काम के लिए भी किसी को तलाशना होगा। कोई छोकरा आया। ओफो, क्या यह सब आज ही की तारीख में तय होना जरूरी है? पापा एकदम झल्ला पड़े। और क्या, हर काम मुझे ही करना होगा। कम से कम एक मेहरी इंतजाम तो तुम कर सकती हो, अड़ोस पड़ोस में शरीफ लोग बसते हैं, जाकर पूछ लो। मम्मी तो एकदम सुबकने ही लगी। ओफो, पापा ने बेचारी से कहा और मम्मी के पास चले आए। एक गाल पर साबुन का झाग फैला हुआ, दूसरा सपाचक पेटी कोट ब्लाउज से ऊपर तौलिया लपेटे मम्मी शंकर जी की तरह बालों का जूड़ा बनाया हुआ। सच देखकर इतनी हंसी आई दीपू को, वह बाहर गैलरी में आकर देर तक हंसता रहा। मन इतना हल्का हो गया था कि घर अब सचमुच घर बनता जा रहा था। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।